विश्वास और ग्रहण। जब आपकी अंतरचेतना पवित्र आत्मा से जागृत हो गई तो आपने पाप की कालुष कालिमा का कुछ अंश देख लिए होंगे, उनकी शक्ति, उनके दुष्परिणाम, तज्जनित कष्ट आप कुछ समझ लिए होंगे। आप उन पर घृणापूर्ण दृष्टि डालेंगे, तब आप यही समझ लेंगे कि पाप ने आपको ईश्वर से दूर फेंक दिया था और दुर्भावनाएं और दुर्वृत्तियां आपको जकड़े हुए थीं। इस संग्राम में आपने ये महसूस किया होगा कि पाप से बचने के लिए जितना तुमुल संघर्ष आप करते होंगे, उतनी दुर्बलता आपको अशक्त करती होगी। तब आपके उद्देश्य कुत्सित थे, हृदय कलुषित था। आपने ये देखा होगा कि आपका जीवन स्वार्थ और पाप का विशाल जाल है। आप क्षमा प्राप्त करने के लिए, स्वच्छ और विकारहीन होने के लिए, मुक्त और निष्पाप होने के लिए प्राणपन से विकल रहे होंगे। ऐसी अवस्था में कौन सी वस्तु सबसे आवश्यक है? ईश्वर के साथ एकतान होने के लिए, उनके अनुरूप बनने के लिए क्या करना उचित है? ऐसी अवस्था में आपको शांति की आवश्यकता है। स्वर्ग से क्षमा, शांति और प्रेम का स्रोत यदि आकर आत्मा में उमड़ पड़े तो आप निर्धन हो जाएं। इन वस्तुओं को धन खरीद नहीं सकता, विद्या बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकती, विवेक ला नहीं सकता। आप अपनी चेष्टाओं से ही इन्हें प्राप्त करने की कभी भी आशा नहीं कर सकते, किंतु ईश्वर इन वस्तुओं को आपको उपहार स्वरूप भेंट करते हैं, बिन रुपए और बिन दाम। यशाया 55 आयत 1। ये आपकी ही हैं, बस अपने हाथ फैलाइए और इन्हें दोनों हाथों लूटिए। प्रभु ने कहा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे लाल रंग के हों तो भी वे ऊन के सरीखे हो जाएंगे। यशाया 1 आयत 18। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उपजाऊंगा। यहेजकेल 36 आयत 26। आपने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है और हृदय से उन्हें अलग कर दिया है। आपने अपने आप को ईश्वर को अर्पित कर देने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। बस अब आप उनके समक्ष जाइए और उनसे कहिए, ये निश्चय आपको नवीन हृदय भी देंगे। अब आप विश्वास कीजिए कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। यही शिक्षा यीशु ने हमें इस संसार में आकर दी। जिन वरदानों के देने का वचन ईश्वर ने दिया है, वे वरदान हमें निश्चय प्राप्त होंगे। यीशु ने उन मरीजों को चंगा किया जिन्होंने यीशु की आरोग्य साधक शक्तियों पर विश्वास किया। यीशु ने उन लोगों की मदद वैसी वस्तुओं में की जो देखी जा सकती थीं, और इस तरह उन लोगों के अंदर ये विश्वास भी जमाया कि यीशु ऐसी वस्तुओं में भी सहायता कर सकता है जो देखी नहीं जा सकतीं। अपने पापों की क्षमा कर देने की शक्ति की ओर लोगों का विश्वास पक्का किया। लकवा मारे हुए मनुष्य को जब यीशु ने आराम किया तो यीशु ने कहा, पर इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने झोले के मारे से कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर जा। मत्ती 9 आयत 6। यीशु के आश्चर्यजनक कार्यों का उल्लेख योहन ने भी किया है, पर ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना 20 आयत 31। सच्ची कसौटी यहां है, यदि हम ख्रीष्ट में बने रहें तो हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारे काम परमेश्वर के पवित्र नियम की आज्ञाओं में दर्शाई हुई उसकी इच्छा के साथ एकताल हो सकते हैं। बाइबल में वर्णित सीधे साधे चंगे करने के तरीकों से हम यही सीखते हैं कि पाप की क्षमा के लिए हमें किस प्रकार उन पर विश्वास करना चाहिए। बेतहजदा के पक्षाघात के रोगी की कहानी को ही लीजिए। वह दरिद्र रोगी निस्सहाय था, बिल्कुल असमर्थ था। उसने अपने अंगों से 38 साल से काम नहीं लिया था, फिर भी यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। गरीब मरीज ये कह सकता था, प्रभु यदि आप मुझमें इतनी शक्ति भर दें कि अंग चलने फिरने लगें, तो आपकी आज्ञा सर आंखों पर रख कर मानूं। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने यीशु के शब्दों पर पूरा विश्वास किया कि वह पूरी तरह चंगा हो गया है और तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने चलने की इच्छा की और वह सचमुच चल भी पड़ा। वह यीशु की आज्ञा पाकर आज्ञा मानने को प्रवृत्त हुआ और ईश्वर ने उसे शक्ति संपन्न किया। वह चंगा हो गया। उसी तरह आप एक पापी हैं। आप अपने विगत पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। आप हृदय बदलकर पवित्र नहीं कर ले सकते। किंतु ईश्वर ने ख्रीष्ट के द्वारा इन सारे कार्यों को संपादित करने का वचन दिया है। आप उनकी प्रतिज्ञा पर विश्वास कीजिए, अपने अपराध स्वीकार कर लीजिए और अपने आप को ईश्वर के पास समर्पण कर दीजिए। उनकी सेवा करने की इच्छा कीजिए। जितने अंश में निश्चय होकर आप ये सारे काम करेंगे, ईश्वर उतनी ही शीघ्रता से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। आप उनकी प्रतिज्ञा पर विश्वास कर लें। आप ये विश्वास कर लें कि आपके समस्त पाप क्षमा कर दिए और आप निर्मल निष्कलंक हो गए, तो ईश्वर का वचन सर्वांशतः पूर्ण हो जाएगा। आप सचमुच पूर्ण हो उठेंगे। पक्षाघात पीड़ित व्यक्ति को जैसे ख्रीष्ट ने चलने की ताकत दे दी क्योंकि उसने यीशु पर विश्वास किया, उसी तरह यदि आपने ईश्वर पर विश्वास किया तो बस आपको पूर्ण हो जाने की शक्ति मिल गई। आप अपनी पूर्णता के अनुभव के लिए ठहरिए नहीं, किंतु वह उठिए। मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं। मैं इसलिए नहीं विश्वास करता हूं क्योंकि मैं उसकी सत्यता का अनुभव कर रहा हूं, वरन इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि ये ईश्वर का वचन है। यीशु कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांग प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। इस वादा के साथ साथ एक शर्त यह भी लगी है कि आपकी प्रार्थना ईश्वर के इच्छानुसार हो, तभी, ऐसे नहीं। लेकिन ईश्वर की इच्छा तो ये है ही कि हमारे पाप धुल जाएं, हम उनके सुपुत्र हो जाएं और हम पवित्र जीवन यापन करने के योग्य बन जाएं। अतएव हम इन उत्तम उपहारों को मांग सकते हैं और ये विश्वास कर सकते हैं कि ये उपहार हमें प्राप्त हो गए, और फिर ईश्वर को धन्य धन्य कह उठें कि ये उपहार वास्तव में हमें मिल गए। हम लोगों को तो ये अधिकार है कि हम यीशु के सम्मुख जाएं और व्यवस्था के समक्ष बिना शर्म और लोभ के डटे रहें। सो अब जो मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। Romans 8:1। अब से आप अपने मालिक नहीं, आपको कीमत चुकाकर खरीदा गया है। तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमोल लोहू के द्वारा हुआ। 1 Petrus 1:18-19। ईश्वर पर भरोसा करने और विश्वास दृढ़ करने के सीधे से काम के कारण पवित्र आत्मा आपके हृदय में नूतन जीवन भर देंगे। आपके प्राणों में नवीन स्फूर्ति छा जाएगी। आप तब ईश्वर के परिवार में एक नवीन शिशु की तरह आ जावेगे और ईश्वर आपको उतना ही प्यार करेंगे जितना वह और पुत्रों को करते हैं। अब जब आपने अपने को यीशु को समर्पित कर दिया है, तो फिर उनसे अलग न होइए, उनसे दूर मत जाइए, किंतु प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए कि मैं ख्रीष्ट का हूं, मैंने अपने को उनके चरणों पर समर्पित किया, और उनसे उनके आत्मा और अनुग्रह की भावना कीजिए। आत्मसमर्पण के द्वारा तथा ईश्वर पर विश्वास करने के कारण आप ईश्वर के पुत्र हो गए। अब आपको ईश्वर में ही जीवन यापन करना होगा। एक प्रेरित ने कहा है, तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके मान लिया है, वैसे ही उसी में चलो। Colossians 2:6। कुछ लोगों की ये धारणा है कि प्रभु की आशीष प्राप्त करने के पहले परीक्षार्थी के रूप में कुछ समय तक रहना और ईश्वर के समक्ष ये प्रमाणित कर देना कि सुधार हो गया है और अब शुद्ध हैं, बहुत आवश्यक है। किंतु नहीं, ये धारणा गलत है। वे लोग ईश्वर की कृपा और अनुग्रह अभी ही मांग सकते हैं। दुर्बलताओं में मदद देने के लिए ईश्वर का अनुग्रह अथवा ख्रीष्ट के आत्मा की सहायता अनिवार्य है, क्योंकि इसके न रहने पर कुवासनाओं के विरुद्ध डटे रहना असंभव है। यीशु की तो इच्छा यही है कि हम लोग अपने वास्तविक नग्न रूप में, अपनी यथार्थ अवस्था में, पपो निस्सहाय और परावलंबी रूप में ही उनके समक्ष जाऊं, अपनी सारी दुर्बलताओं, मूर्खताओं और पापों के साथ पश्चाताप करते हुए जाकर उनके पैरों पर गिर जाना हमारे लिए आवश्यक है। फिर तो उनकी महत्ता यही है कि अपने प्रेम के बाहुपाश में वे हमें जकड़ लें, हमारे घावों पर मलहम पट्टी लगाएं और सारी कुत्सित भावनाओं को धोकर हमें निर्मल और पवित्र कर डालें। इस स्थान पर हजारों लोग असफल हुए हैं। वे यह विश्वास नहीं करते कि यीशु प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग क्षमा करते हैं। इन लोगों को ईश्वर के वचन पर अक्षरशः भरोसा नहीं। जिन लोगों ने ईश्वर की शर्तें पूरी की हैं, उन्हें तो यह अधिकार मिल गया है कि वे ये जान जाएं कि पाप एक एक करके क्षमा होता है। इस भ्रम को दूर कीजिए कि ईश्वर के वचन आपके लिए नहीं है। ये वचन प्रत्येक पश्चाताप में डूबे हुए पापी के लिए हैं। ख्रीष्ट के द्वारा प्रचुर शक्ति और अनुग्रह रखे गए हैं, ताकि सेवक दूतों के द्वारा विश्वासी लोगों में संबल और शक्ति भर जाएं। चाहे कोई कितना भी गर्हित पापी क्यों ना हो, वो इतना नीच नहीं कि यीशु की शक्ति, पवित्रता और शुचिता प्राप्त नहीं कर सकता। यीशु उनके लिए ही मरे और वे ही उनसे वंचित रहें। वे तो ऐसे लोगों के पाप पंख में लतपत और गदे कपड़े उतार फेंकने तथा उनकी जगह शुचिता के उज्जवल वस्त्र पहनाने को कब से तैयार बैठे हैं। वे तो कहते हैं, मरो नहीं, जीवित रहो। जिस तरह साधारण मनुष्य एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं, उस तरह ईश्वर हमारे प्रति व्यवहार नहीं करता। उसके विचार के मूल में करुणा, प्रेम और सच्ची सहानुभूति रहती है। वे हमेशा ये कहते हैं, दुष्ट अपनी चालचलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वो पूरी रीति से उसकी क्षमा करेगा। यशाया 55:7। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। यशाया 44:22। प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि जो मरे उसके मरने में मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए फिरो, तब तुम जीते रहोगे। यहेजकेल 18:32। ईश्वर ने जो वचन दिए हैं, उन्हें चुरा लेने को शैतान सदा तैयार है। वो तो आपके हृदय को प्रतिभासित करने वाली आशा और जीवन की प्रत्येक किरण को मिटा देने की चेष्टा में है। आपका कर्तव्य है कि आप उसे ऐसा करने से रोके। मोह से लिप्त कराने वाले उस शैतान की ओर ध्यान न दें, वरन आप ये कहें, यीशु इसलिए मरे कि मैं अमर बनूं। वे मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मैं विनष्ट न हों। मेरे एक परम दयामय पिता हैं। यद्यपि मैंने उनके अनुग्रह को तिरस्कृत किया, उनके वरदानों को कौड़ी के तीन कर बिखेर फेंका, फिर भी मैं जागृत होऊंगा और अपने पिता के पास जाकर कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे देखते पाप किया है। अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई लगा ले। फिर वह दृष्टांत आपको बता देता है कि पथ भ्रष्ट का स्वागत कैसे होगा। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये दृष्टांत बड़ी कोमल और मार्मिक वेदना से भरा है, किंतु तो भी ये ईश्वर जैसे परम पिता की अनंत ममता और वात्सल्य भावना के निस्सीम रस को व्यक्त करने में असमर्थ है। अपने भविष्यवक्ता द्वारा ईश्वर ने ये घोषणा की है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझे करुणा करके खींच लिया है। यिर्मयाह 31:3। और जब पापी के हृदय में ईश्वर के पास लौट चलने की जितनी भी विकलताएं आती हैं, उनमें प्रत्येक ईश्वर की प्रेरणावश होती हैं। वे ईश्वर के अनुनय विनय प्रेमाकर्षण ही रहती हैं, जो उसे अपने परम पिता के पास लौट चलने को कहती हैं। बाइबल की आशा से भरी ज्योति के रहते हुए भी क्या आप संशय के अंधकार में रहेंगे? क्या आप कभी ऐसा विश्वास करेंगे कि जब वह विचारा पापी अपने पापों से मुक्त होने और ईश्वर के पास लौट चलने के लिए व्याकुल रहेगा, तो ईश्वर उसे अपने पैरों में स्थान देने के बदले फटकार देगा? ऐसे विचारों को दूर बाहर कीजिए। ईश्वर जैसे परम करुणामय परम पिता की ऐसी मिथ्या धारणा बनाकर आप अपनी आत्मा को सबसे बुरी चोट पहुंचाते हैं। ये बात ठीक है कि वे पाप से घृणा करते हैं, किंतु पापी को तो वे प्यार करते हैं, और उन्होंने यीशु के रूप में अपने आप को इसी प्यार से समर्पित कर दिया ताकि जो कोई भी चाहे मुक्त हो, पाप और महिमामय स्वर्ग के राज्य में अनंत आनंद का उपभोग करे। अपने प्रेम व्यक्त करने के लिए जैसे भाषा और जैसे शब्दों का व्यवहार उन्होंने कहा है, क्या कोई स्त्री अपने दूध पीवे बच्चे को ऐसा बिसरा सकती कि अपने उस जने हुए लड़के पर दया न करे? हां, वह तो भूल सकती है, पर मैं तुझे भूल नहीं सकता हूं। यशाया 46 आयत 15। संशय में पड़े लोग, कंपत्ते हुए लोग, अपने संदेह छोड़ो, जरा ऊपर देखो। यीशु हमारी भलाई और मुक्ति के लिए जीवित है। ईश्वर को शत शत बार धन्य धन्य कहो, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र दिए, और प्रार्थना ये करो कि उनका प्राणोत्सर्ग तुम्हारे लिए व्यर्थ का ना हो। उनका आत्मा तुम्हें आज ही बुला रहा है। तुम अपने हृदय की सारी आकांक्षा लेकर उनके पास चले आओ, और तब तुम उनकी आशीषों का दावा कर सकते हो। ईश्वर के वचनों को मनन करते समय ये मत भूलिए कि उन्होंने प्रेम सिक्त शब्दों में करुणार्द्र हृदय से ही सारी प्रतिज्ञा की है। असीम प्रेममय, दयासागर और करुणाकर प्रभु का हृदय पापी की ओर अनंत ममता से आकृष्ट होता है। हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इफिसियों 1 आयत 7। ये सच है। केवल दृढ़ विश्वास कीजिए कि ईश्वर ही आपका एकमात्र सहायक है। वो अपनी नैतिक प्रतिमूर्ति मनुष्य में पुनः स्थापित करना चाहता है। जैसे जैसे अपने पापों की स्वीकृति और उनके लिए प्रायश्चित करते हुए आप ईश्वर के पास पहुंचते जाइएगा, वैसे ही वह भी अपनी करुणा और क्षमा के साथ आपके निकट पहुंचता जाएगा।